is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Malaysia's Coast Guard has made its largest ever seizure of methamphetamine, a top official said Sunday, seizing over 2 tons of the drug disguised as tea in a shipment believed to have come from Myanmar. The chief of the Coast Guard said the drugs found on a boat in northern Penang State were worth over $26.2 million. A local suspected trafficker was arrested. The chief said the drugs appear to have been smuggled out from Myanmar's Golden Triangle. The intercepted shipment was likely destined for neighboring countries where it would fetch a higher price than in Malaysia, he added. In recent years, Malaysia has made a number of seizures of highly addictive crystal meth. The Southeast Asian country itself is battling a major drug addiction problem. The nation's first COVID-19 vaccine will begin arriving in U.S. states Monday morning, U.S. officials said this weekend, after the government gave the final go-ahead to the shots needed to end an outbreak that has killed nearly 300,000 Americans. Trucks are rolling out Sunday morning as shipping companies UPS and FedEx begin delivering Pfizer's vaccine to nearly 150 distribution centers across the states, said Army General Gus Perna of Operation Warp Speed, the Trump administration's vaccination program. And Chancellor Angela Merkel is holding crisis talks Sunday with regional leaders of Germany's 16 states to agree on tougher curbs, including the closure of shops ahead of Christmas as coronavirus infections surge unabated. The drastic measures hitting shops other than those selling essential goods would be imposed from Wednesday until at least January 10th, according to a draft by Merkel's office. Schools could also be shuttered, sending pupils into homeschooling, while companies are requested to allow employees to work from home during this period. This is VOA News. French riot police dragged and arrested demonstrators in Paris who were protesting against police violence and a security bill this weekend. Parisians and press freedom activists took to the streets to protest against the draft law, which sets out to increase its surveillance tools and restrict rights on circulating images of police officers in the media and online. Protesters say the bill would also restrict civil liberties and infringe journalists' freedom in the country. France has been hit by a wave of street protests after the government introduced the security bill in parliament. The bill was part of French President Emmanuel Macron's drive to get tougher on law and order ahead of elections in 2022. His government also said the police needed to be better protected from online hate, but the draft legislation provoked a public backlash. And in a recent U-turn, Macron's ruling party said it would rewrite the article. Armenia and Azerbaijan have accused each other of breaching a peace deal that ended 6 weeks of fierce fighting over Nagorno-Karabakh. Armenian separatist officials in Nagorno-Karabakh said the Azerbaijani military launched an attack late Friday that wounded 3 ethnic Armenian servicemen. The Armenian Defense Ministry later charged that the Azerbaijani army mounted an attack Saturday in the south of Nagorno-Karabakh. Azerbaijani President Ilham Aliyev accused Armenian forces of starting the fighting and threatened to destroy them. The reports of new fighting come just over a month after the signing of a Russia-brokered peace deal that saw Azerbaijan reclaim control over broad sections of Nagorno-Karabakh and surrounding lands in a conflict with Armenia. A Chinese space capsule bringing back the first moon rocks in more than 4 decades has begun its return trip to Earth. The China National Space Administration says the lunar probe left the moon's orbit on Sunday to start its journey home. The mission landed on the moon earlier this month and collected about 4.4 pounds of samples. The return capsule is expected to land in northern China in the Inner Mongolia region. The samples would be the first brought back since the Soviet Union's Luna 24 probe in 1976. And a firebrand Indonesian Muslim cleric was arrested Sunday for allegedly breaching coronavirus restrictions after he held a series of sermons with tens of thousands of followers. The cleric's arrest came just days after Jakarta police shot dead followers of his hardline Islamist group in a highway shootout. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ایک جھلک سنتے ہیں.
یہاں سے ہم وہاں جا رہے ہیں بورڈر پر, کسان بھائیوں سے ملنا ہوا, واپس پولیس والوں, کسان کی بیٹی, کسان کی بہو, ہم بھی تو کسان ہیں. میرا کسان ہمارا ابھی تو ہمیں جوانوں کو ضرورت طاقت ہے بولنے کی, چلنے کی, بات کرنے کی, پانچ منزل چڑھنے اترنے کی. ہم تو ہارے نہ, ابھی نہ ہارا, ان شاء اللہ پوری جان لگا دیں گے.
ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے متنازع زرعی قوانین کے خلاف بھارت میں جاری احتجاج اور کسانوں کا 8 دسمبر کو ملکی ہڑتال کا اعلان. پیر کے روز جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج گزشتہ 11 دن سے جاری ہے. کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نے جو 3 زرعی قوانین منظور کیے ہیں انہیں واپس لے, اناج منڈیوں کو ختم نہ کرے اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اناج کی کم سے کم سپورٹ پرائس, جسے منیمم سپورٹ پرائس یا ایم ایس پی کہا جاتا ہے, اسے قائم رکھنے کے لیے قانون وضع کیا جائے. آپ ایم ایس پی کی اس اصطلاح کو یاد رکھیے گا کیونکہ اس گفتگو کے دوران ہمارے ماہرین کئی بار اس اصطلاح کا استعمال کریں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے. کسانوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو 8 دسمبر کو مکمل بھارت بند ہڑتال کی جائے گی. تو آج 8 دسمبر کو جب یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے, جو کچھ آج کے دن ہوا ہے وہ آپ ہمارے نیوز آور میں اور خبروں میں سن رہے ہوں گے, لیکن بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے ان میں پون کھیڑا صاحب ہیں جو کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان ہیں, اور اس وقت اس احتجاج سے متعلق جو بھی بریفنگ یا پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ پون کھیڑا صاحب ہی کرتے ہیں. راجیو پانڈے صاحب ایک ممتاز تجزیہ کار اور بی جے پی پینلسٹ ہیں, وہ نمائندگی کریں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کے موقف کی. ڈاکٹر آشیش متل صاحب آل انڈیا کسان مزدور سبھا کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اس میں ان کی تنظیم کا بہت بڑا رول ہے. پنجاب سے جو لوگ آئے ہیں ان میں ان کی تنظیم کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں. آل انڈیا کسان سنگھرش رابطہ کمیٹی کی ایک رکن تنظیم ہے جس نے ان 3 زرعی قوانین کے آنے کے بعد موقف اختیار کیا تھا. دوسرے کسان مزدور رہنما اتل کمار انجان صاحب ہیں. ایک لمبے عرصے تک انہوں نے بھارت کے طلبا اور نوجوانوں کے درمیان کام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کسانوں کے درمیان کام کرنے کا آغاز کیا اور ہندوستان کی سب سے پہلی بڑی تنظیم آل انڈیا کسان سبھا کے ایک دہائی سے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت پیاری شخصیت سے بھی میں نے بات کی ہے, یہ ہیں شاہین باغ کی دادی. نام ان کا بلقیس بانو ہے لیکن یہ شاہین باغ کی دادی کے نام سے معروف ہیں, اور امریکہ کے موقر جرید ٹائم نے انہیں سال کی سب سے زیادہ بااثر 100 شخصیات میں شامل کیا ہے. 82 سالہ بلقیس بانو نے, جنہیں دادی کے نام سے جانا جاتا ہے, سنگھو بارڈر پہنچ کر کسانوں کے دھرنے کی حمایت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیوں انہوں نے مجھے بتایا,
یہاں سے ہم وہاں جا رہے ہیں بورڈر پر, کسان بھائیوں سے ملنا ہوا, واپس پولیس والوں.
اچھا تو دلی سے باہر ہی نہیں جانے دیا؟
آرام سے بیٹھ گئے گاڑی میں, ہمارے ساتھ لیڈیز بھی مزدور جب جا رہے تھے, جب ہمارا چاہتا ہے سب, ہم نے کہی ہم کسانوں سے ملنے, انہوں نے کہی نہیں تمہاری عمر زیادہ ہے, کرونا ہو جائے گا, تم سیدھے گھر چلی جاؤ. تو انہوں نے بیٹھا کر ہمیں تھانے پر چھوڑ دیا.
حمایت کرنے کا کیوں سوچا کسانوں کی؟
کسان کی بیٹی, کسان کی بہو, ہم بھی تو کسان ہیں. 100 بیگھے زمین ہے, بجلی کا کنواں ہے, باغ 40 بیگھے باغ ہے اس میں. اب کسان نا اور کیسا, ہاپوڑ سے 12 کلومیٹر ہے پرانا ہمارا گاؤں, تو وہاں کے رہنے والے بہت بڑھیا لگتا. 25 سال ہمارے دیور نے پردھانی کری, 10 سال ہماری بہن نے کری, ہمیں پہلے سے جانا ہے دنیا.
کیا اگاتے ہیں آپ لوگ؟
مونجی بھی ہوتی ہے, گیہوں بھی ہوتے ہیں, آلو بھی ہوتے ہیں, آم 40 بیگھے آم ہے.
تو اس وقت جو ہوا ہے معاملہ, جو قانون منظور کیے گورنمنٹ نے, اس سے کیا نقصان ہوگا کسانوں کو؟
لیتے ہیں تو 8 روپے کلو لیتے ہیں, اور جب بنیوں کا چلا جائے تو 20-22 کلو بیچتے ہیں. تو کسانوں کو تو سارا نقصان ہے, بوائیں جوتا ہے, پانی دیں, کھاد دیں, بیج ڈالا ہے, جب جا کے کھیتی ہوئے چنے بھی تھوڑے اگ جا, پھر جب اسے 8 روپے کلو لائیں گے تب اپنے بچوں کو ہم کیا کھانا تھا. اب جو زیادہ پیسے والے یا خرید رہے جو غریب بھائی ہیں یہ بھوکے مر رہے, تو یوں نقصان تو کسانوں کا بھی ہے مزدور کا بھی ہے, نوکری نہیں بچوں کو.
تو کیا ارادہ کیا ہے آگے کسانوں کے لیے کیا کریں گی؟
تو ہم تو یہ کریں گے, یہ کالا قانون جو لائے ہیں انہیں واپس کر لیں, اور اتنی مہنگائی ہے آلو 50 روپے کلو بک رہے ہیں, پیاز 50 روپے کلو ہی ہمارا آتا ہے تو 8 روپے کلو لیتے ہیں, اپنا آتا 20-22 کلو 50 روپے کلو دیتے ہیں, تب کسانوں کو تو سارا ہی چھوٹا میسن لیں گے پرمیشن لیں گے جانے کی, جبھی تو جان دیں گے ویسے کہیں تو جان دے رہے ہیں. ہاتھ رس مجھے ہوا تو وہاں بھی ہم نے بہت کوشش کری نہ جان دیا. ہاں میرا کسان ہمارا ابھی تو ہمیں جوانوں کے طور پر طاقت ہے بولنے کی چلنے کی بات کرنے کی 5 منزل چڑھنے اترنے کی, ہم تو ہارے نہ ابھی اور نہ ہارا, ان شاء اللہ پوری جان لگا دیں گے.
یہ ہے شاہین باغ کی دادی. اور اب چلتے ہیں آج کے ڈسکشن کی جانب. میں پون کھیڑا صاحب سے اب جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے کہ یہ جو اندولن یا جو احتجاج ہے اس وقت, تو اس میں کانگریس پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے کسانوں کے مسئلے کو, تھوڑا سا آپ اگر ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ جو 3 متنازع زرعی قوانین ہیں ان میں سب سے زیادہ جو جس بات پہ اعتراض ہے اور جسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پون کھیڑا صاحب,
کانگریس پارٹی ستہ میں جب ہم تھے تب بھی خاص طور پہ میرے نیتا راہل گاندھی جب یو پی اے کی سرکار تھی تب بھی کسانوں کے ہت میں ان کے پکش میں ان کے حق کی بات آواز بڑی بلند کرتے رہتے. اب پچھلے کچھ مہینوں میں پنجاب میں ہریانہ میں الگ الگ حصوں میں دیش کے حالانکہ کووڈ کا ایک سنکٹ سب جگہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی راہل جی نے جا کر کسانوں کے بیچ کھڑے ہو کر ٹریکٹر ریلیاں کی, کسان سمیلن کیے, اور ان کے جو بھے تھے ان نئے قانونوں کو لے کر ان بھیوں کو سمجھا, ان کو آواز دی, ان سے بات چیت کی. جو سب سے بڑا اس میں دقت کسانوں کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اے پی ایم سی کا سٹرکچر ہے, اے پی ایم سی ایک منڈی کی جو ویوستھا ہے اس ویوستھا کے تحت کسان اپنی اپج لے کر منڈی میں جاتا ہے اور وہاں بولی لگتی ہے اس کی اپج پر اور ایک بینچ مارک پرائس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ستھاپت ہوتا ہے. منڈی ویوستھا میں کئی خامیاں ہیں, اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے, شک نہیں ہے, وہ خامیاں دور ہونی چاہیے, یہ بات ہم بھی کوشش کرتے آئے ہیں کہ خامیاں دور ہوں, لیکن منڈی ویوستھا کو ہی آپ ختم کر دیں تو اس کے ساتھ انیک سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک, آپ منیمم سپورٹ پرائس کہاں دیں گے؟ اور بھائی میں جب کہتا ہوں منڈی ختم ہو جائے گی تو بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے صاحب ہم نے تو کہیں نہیں لکھا منڈی ختم ہو جائے گی, تو میں تھوڑا اس میں خلاصہ دینا چاہوں گا. منڈی ویوستھا میں منڈی پر ایک مارکیٹ فیس لگتی ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ لگتا ہے, یہ دونوں فیس کوئی کسان کو اپنی جیب سے نہیں دینی ہوتی, یہ بائر کی جیب سے جاتا ہے. لیکن جو نئی ویوستھا لائی جا رہی ہے اس میں نہ تو کوئی مارکیٹ فیس لگے گی, نہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ لگے گا, کوئی چارجز لگیں گے, کچھ نہیں. نمبر دو, کون سی فصل, کتنی فصل کس نے خریدی اور کتنے میں خریدی, اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی وبھاگ نہیں ہوگا, کیونکہ کسان کے کھیت پر کوئی لالا جائے گا, سیٹھ جائے گا یا کوئی ایجنٹ جائے گا, وہ وہیں چپ چاپ مول بھاؤ کر کے آ جائے گا, نہ کوئی بینچ مارک پرائس ہوگا, نہ سرکار کی کوئی دیکھ ریکھ ہوگی. یہ سب سے بڑی سمسیا ہمیں ان 3 نئے قانونوں میں ہے. نمبر دو, جو کانٹریکٹ فارمنگ ہے, اب آپ بتائیے 86% کسان اس دیش کے 2-5 ایکڑ زمین کے مالک ہیں, ان سے آپ کیسے امید کرتے ہو کہ وہ بڑے بڑے سیٹھوں کے سامنے اپنے ایگریمنٹ, اپنے کانٹریکٹ, اپنے حق کے لیے لڑ پائیں گے؟ آپ نے اس قانونوں کے تحت یہ بھی کر دیا کہ سول کورٹس میں نہیں جا پائیں گے کسان. کون سا کسان ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ایس ڈی ایم کے دروازے پہ جا کر اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتا ہے, وہ بھی ایک چھوٹا کسان. یہ ہماری بریفلی جو میں آپ بتا رہا ہوں
جی
ہماری
بالکل
بلوں ان قانونوں میں سمسیا ہے.
بہت شکریہ. اور اب میں, آپ نے بی جے پی کی بات کی اور بی جے پی کی جانب سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجیو پانڈے صاحب موجود ہیں. راجیو پانڈے صاحب, اس میں جو آپ جواب دینا چاہیں پون صاحب کی بات کا, لیکن ساتھ ساتھ میں جو خاص طور پہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ کسان جو یہ بات کہتے ہیں کہ ان قوانین سے کانٹریکٹ فارمنگ کا دور شروع ہو جائے گا جو کسانوں کے مفاد میں نہیں ہوگا, تو اس کے بارے میں پوزیشن جو ہے پارٹی کی کیا ہے؟
پہلے تو میں پون کھیرا جی کی باتوں کا ریسپانس کے بعد میں آپ کو جو کانٹریکٹ فارمنگ پر آپ نے سوال
جی
کیا
جی
ہے
جی بالکل
اس کے بارے میں میں اپنی بات رکھوں گا.
ٹھیک ہے.
دیکھیے آپ نے بہت ہی پن پوائنٹڈ سوال پوچھا پون کھیرا جی سے کہ کیا ریئل میں ایشو کیا ہے. تو انہوں نے دو تین باتیں کی کہ ایم ایس پی جو ہے وہ کسان لالا جائے گا اور جا کر کے فارم پر بات کر کے وہیں سے چلا جائے گا اور کم دام میں خرید لے گا. کسان کو پتا ہے کہ ایم ایس پی کے لیے ایک منڈی ہے, اگر اس کو ایم ایس پی سے کم پرائس ملے گا تو وہ اس لالا کو کیوں دے گا. آج وہ اپنی ساری جو فصل ہے وہ اس کو منڈی تک لاتا ہے اور منڈی پر لانے کے بعد وہ وہاں بیچتا ہے. اب جو پیریشیبل گوڈس ہے اس کا جو سسٹم ہے, کیا ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ وہاں اپنا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یا جہاں اے پی ایم سی کا مارکیٹ ہے وہاں پر لا کر کے وہ اپنے سب سے اچھی جو اس کی پرائس ہے اس کو لے سکتا ہے. ابھی جو یہ پورا کا پورا جو تینوں جو ہے یہ بہت بڑا ریفارم ہے جو 1991 میں جو پی وی نرسمہا راؤ جی نے جو ریفارم کیا تھا انڈسٹریل لیول پہ, یہ ایگریکلچر لیول ایگریکلچر میں اسی کے ٹکر کا یہ ریفارم ہے. میں کہہ رہا ہوں 2019 میں جو مینیفیسٹو تھا کانگریس پارٹی کی, 2019 کے مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. پون کھیرا صاحب نے مانا کہ منڈی ویوستھا میں بہت ساری خامی ہے, اسی خامی کو دور کرنے کے لیے یہ ریفارم لایا گیا ہے. اور ان کے نیتا میں کپل سبل صاحب کا پارلیمنٹ میں بھاشن ہے کہ منڈی ویوستھا میں کیا خامی ہے اور کس پرکار سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ منڈی ویوستھا میں 8.5% آج کے دن میں, جی ایس ٹی سے پہلے 14% تھا, آج کے دن میں پنجاب میں 8.5% 3% جو منڈی ٹیکس ہے, 3% آپ رورل ڈیولپمنٹ سیلس لگاتے ہیں اور 2.5% کمیشن ایجنٹ کی بات ہے. کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں؟ آپ رورل ڈیولپمنٹ میں اس کا خرچہ نہیں کرتے, اس کا اپیوگ آپ کچھ اور کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایگریکلچر ریفارم کی بات ہے اور آج یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پورے گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں. 1.80 لاکھ کروڑ کے ڈیٹ میں ایف سی آئی ہے, کس کون پہ ذمہ دار؟ آپ منڈی سسٹم سے جو اے پی ایم سی کا مونوپولی ہے یہ سرکار اس کو توڑنا چاہتی ہے, کسان کو یہ ادھیکار دینا چاہتی ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا مال اے پی ایم سی میں آ کر کے بیچیں, لیکن اگر آپ کو ایم ایس پی سے اوپر کہیں بھی اور پرائس مل رہا ہے آپ بیچ سکتے ہیں. آج کیا پرستھتی ہے, کیا بدلاؤ ہوا ہے اس پورے ایکٹ سے؟ ایک ہی بدلاؤ ہوا ہے کہ منڈی کی جو مونوپولی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے اور منڈی کی مونوپولی سے جو بیچ کے جو ایجنٹ ہے, جو فارمر پروڈیوسر 2 روپے کلو گاؤں میں آلو بکتا ہے اور شہر میں وہ 40 روپے ہو جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ آپ 8.5% سرکار بھی دیتی ہے. تو پون کھیرا جی کے پورے میں وہ آلموسٹ اس سے سہمت دکھ رہے ہیں مجھے, لیکن کیونکہ کل تک تو انہوں نے کوئی ورودھ کیا نہیں اور کیونکہ کسان آ گئے ہیں اور ان کا کچھ ہے تو وہ آج ورودھ میں آ رہے ہیں. اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کانٹریکٹ فارمنگ پر. دیکھیے کانٹریکٹ فارمنگ کا جو ایکٹ ہے یہ ولنگ کسان کے لیے ہے, کوئی مینڈیٹری تھوڑی ہے کہ ہر کسان کو کانٹریکٹ فارمنگ ہی کرانا ہے. جو خود کر رہا ہے وہ کیوں جائے کانٹریکٹ فارمنگ میں؟ میں خود کسان کا بچہ ہوں, میں لا پڑھتا ہوں, میں نے لا کی پڑھائی کی, لیکن ہم تو کسان سے نکلے, ہم تو ساری کھیتی ابھی بھی گاؤں ہو کے آئے. وہاں میں بہار سے آتا ہوں, وہاں اے پی ایم سی 2006 میں چلی گئی. آج اس منڈی مونوپولی کی وجہ سے جو پنجاب اور ہریانہ میں جس پرکار سے جو پرچیزنگ ہو رہی ہے اس سے ہمارے یہاں کا پرائز دب گیا بہار میں, کیونکہ وہ یہاں سے لیتے ہیں اور سرکاری سسٹم سے وہ 2 روپے کلو اناج بانٹ رہے ہیں. دیکھیے بہت ساری ایشوز ہیں اس میں اور میرا ماننا ہے کہ یہ جو تینوں ایکٹ ہیں, ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہے اس کا تو بہت زیادہ لوگ ورودھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسٹاک لمٹ اور پرائز لمٹ کے بارے میں ہے. جہاں تک اے پی ایم سی کی بات ہے, سرکار نے کئی بار کہہ دیا کہ ہم ایم ایس پی کو نہیں ہٹانے والے, اتنا بڑا ڈیبیٹ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار پارلیمنٹ میں کہہ چکی ہے, باہر کہہ چکی ہے کہ ہم ایم ایس پی کو نہیں ہٹانے والے ہیں, وہ ہٹا دے گی اور لوگ چپ بیٹھیں گے؟ اور کانٹریکٹ فارمنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی, یہ کوئی مینڈیٹری تھوڑی ہے, جہاں پر جن کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے.
میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی نہیں ہیں کسی قانون میں, لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے وہ عمل میں آتی ہیں, تو یہ خدشات ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی نئے قوانین متعارف کیے جاتے ہیں تو اس طرح کے خدشات موجود ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر متل سے اب یہ بات پوچھنا چاہوں گی, ویسے تو وہ اس میں جو بھی جواب دینا چاہے, لیکن یہ جو بات کہی پانڈے صاحب نے کہ منڈی کی جو ہے مونوپلی کو ختم کرنا اس کا مقصد ہے, تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں یہ مقصد ہے اس کا, منڈی کی مونوپلی کو ختم کرنا اور وہ ہو جائے گی ختم؟
شناز جی, پہلی بات تو یہ کہ کانگریس اور بی جے پی दोनों इस सवाल को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का सवाल बनाना चाहते हैं। ये सवाल किसान बनाम कॉरपोरेट का सवाल है। जो दो कानून लिखे हैं दोनों के प्रीएम्बल में शुरू में ही ये बात लिख दी है कि इसमें कॉरपोरेट घरानों को, बड़े खरीदारों को और कंपनियों को स्थापित किया जाएगा। जो मंडी कानून था एपीएमसी का, उसमें बड़े खरीदार वर्जित थे, क्योंकि बड़े खरीदार खरीद में मोनोपोली पैदा करते थे और रेट को गिरा देते थे। किसान एक ऐसा मजबूर इंसान है जिसकी फसल जिस समय होती है उस समय खरीदार जो भी रेट देगा उसको बेचनी ही होती है, क्योंकि वो कर्जे से लदा है, उसको अगली फसल बोनी है। इसकी सुरक्षा के लिए मंडी कानून बना था। जो कानून बीजेपी ने बनाया है एपीएमसी वाला, एपीएमसी बाईपास कानून हम लोग कहते हैं उसे, उसमें लिखा है कि निजी मंडियां को लीगल राइट मिलेगा। तो ये जो बिहार का एग्जाम्पल है ये एकदम अनरिलेटेड एग्जाम्पल है। एपीएमसी फंक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी कंपनियों को, कारगिल, ड्रियाफूस, एडीबी, रिलायंस, अंबानी को आप अधिकार दे दें कि आप खुद मंडी लगा लें और उसका लीगल राइट हो। ये जो है अलाउड नहीं था उस कानून के अंदर। अब जो है ये लीगल राइट दे दिया गया है, और अब इस लीगल राइट में, इसके कानून में लिखा है सेक्शन 426 के बीच में कि जो रेट डिसाइड होगा वो रेट ई ट्रेडिंग से डिसाइड होगा। गवर्नमेंट लिख सकती थी कि जो रेट डिसाइड होगा वो एमएसपी से डिसाइड होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने मंडी से नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ने लिखा है साफ साफ कि वो ई ट्रेडिंग के रेट से, यानी सबसे लोअर रेट डिसाइड होगा। जाहिर बात है कि कंपनियां लोएस्ट रेट पर खरीदेंगी। दूसरा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लिख रहे हैं कि ये विकल्प है और किसान ना चाहे तो ना करे, ये एक पूरी मोनोपोली की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि इसमें बिचौलिए नियुक्त होंगे जो जमीन का एग्रीगेशन करेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से ये काम कराया जाएगा, इनकी अपनी मंडी के निजी टैक्सेशन होंगे, और ये लागत के दाम, किसान तो बहुत सारा प्रोत्साहित होता है, हिंदुस्तान में कॉटन से लेकर तमाम फसलों के लिए प्रलोभित करके लोगों को जो है खेती कराई गई, महंगे बीज खाद बेचे गए और लोगों ने आत्महत्या करी। जितनी जल्दी बीजेपी गवर्नमेंट इस बात को समझ ले कि 1991 की पॉलिसी से पहली बार भारत के अंदर 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अब वो सीधे तौर पर इसको जो है यहाँ पर खेती में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीजेपी गवर्नमेंट के उन तमाम तर्कों को खारिज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि इस कोरोना पीरियड में खेती 3.4% से बढ़ी है, ये पुराना ही ग्रोथ रेट है, और ये इसलिए बढ़ पाई क्योंकि कॉर्पोरेट का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि नई व्यवस्था ला रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ मोदी जी के कि वो नई व्यवस्था ला रहे हैं, और ये नई व्यवस्था कॉर्पोरेट के कब्जे की व्यवस्था है जिसमें किसान उजड़ जाएगा, इसीलिए लाखों किसान उतर के आ गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का विरोध नहीं है, ये बिल्कुल आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में काला बाजारी और जमाखोरी करने पर रोक थी, 3/7 का केस चलता था। एसेंशियल कमोडिटी होती है वो जो जनता के जीवन के लिए जरूरी है। इन्होंने लिख दिया है अब खाना उसमें नहीं आएगा, अनाज, दाल, चना, चबेना कुछ नहीं उसमें आएगा। अब जो है उस पे हस्तक्षेप तभी होगा जब कोई विशेष परिस्थिति होगी या दाम पिछले साल से 1.5 गुना और 2 गुना हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया है कि राशन के कानून तो लागू होंगे लेकिन जब तक लागू है तभी तक होंगे। इन्होंने साफ संकेत कर दिया है कि राशन व्यवस्था को भी चौपट कर देंगे। तो एक तरफ काला बाजारी और जमाखोरी और काला बाजारी को ये बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा 75 करोड़ राशन के लाभार्थियों को कंपनियों के सामने मजबूर करने के लिए, महंगा खाना खरीदने के लिए खोल रहे हैं।
अब मैं बात करना चाहूंगी अतुल कुमार अंजाम साहब से कि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ तो बातचीत के दौर हैं जो सामने आए हैं और पर्दे के पीछे भी, यानी ऐसी भी हुकूमत की और किसानों के नुमाइंदों की बातचीत हुई है जो मीडिया में जो सामने नहीं आई। तो एक तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जितने भी अदवार हुए बातचीत के, उससे कोई ठोस बात सामने आई या नहीं आई, और दूसरी ये कि क्या जो इशू है इसके ऊपर जो किसान पार्टियां हैं उनमें मुकम्मल इत्तेहाद है या उनमें भी कुछ इख्तलाफ है।
मैं बहुत से सवालों का जवाब दे सकता था लेकिन कुछ बात आशीष मित्तल जी ने जो कह दी है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता।
जी हाँ।
मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये तीनों कानून और ये बिजली कानून 2020 है, इसके चलते मुल्क के अंदर एक बड़ी हंगामेदारी जो है माहौल बन गया है। और मुझे मशहूर शायर मजरूर सुल्तानपुरी का वो शेर, वो फिल्मी गाना है, लेकिन उसका एक शेर याद आता है जो हिंदुस्तान के किसानों को ही मद्देनजर रख करके शायद उन्होंने लिखा होगा, और वो है कि हम हैं मताए कूचे बाजार की तरह और उठती है हर निगाह यहाँ खरीदार की तरह। ये तीनों के तीनों कानून उसी की तर्जुमानी करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तीन दौर की अवामी बात हुई और दो दौर की बात पोशीदा थी उसके बारे में मैं कुछ चलेगी। तीन दौर की जो बात हुई उसी दौर में कैबिनेट के तम कुछ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात कर ली और हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर ने तीन दौर की बातचीत और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने हमारे किसान रहनुमाओं से या किसान रिप्रेजेंटेटिव से तमाम तंजीमों के तरफ से मुंतखब उनसे बात कर ली। लेकिन मैं समझता हूँ जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस बात को मान लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो दो बार उन्होंने इस बात को कहा कि हमने किसानों के रहनुमाओं की या किसानों के नुमाइंदों की बात सुनी, उसमें बहुत सी बातें हैं, 9 बातें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि इस कानून में तब्दीली के लायक है, तो आपने मान लिया। आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री तो कहे थे इसमें तो कुछ गड़बड़ी है ही नहीं, तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने इस बात को भी मान लिया कि ये जो अधिकार है, ये जो इसके अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि किसान एसडीएम के कोर्ट में जाते हैं, जा सकते हैं और कहीं ऊपर सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये जो बात कही है हम इसमें तरमीम की बात सोचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ हो गया, जो हमने 33 नुकाती अपनी जो दर्ज कराई थी कि हम इससे सरकार की इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इस एक्ट के 33 पॉइंट पर जो हमने बदल पॉइंट रखे थे उसको भी उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें हमको समझ में आ रही हैं और हम इस पर बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो कि सरकार का ये कानून खुद के सरकार की निगाह में क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक और बात आपको कहना चाहते हैं, 2013 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के खिलाफ मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा किसानों ने आंदोलन चलाया था और उसमें कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का वो एक्ट और उसके अंदर एक्ट नंबर 4 जिसमें डीएम को अधिकार है कि किसी की जमीन को अपने हाथ में ले लेगा, एक ऑर्डर करके उसका दाम भी तय कर देगा, इसकी वजह से बहुत आंदोलन हुआ और फिर सरकार को मजबूर होकर के एक लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलना पड़ा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसकी सदर वो बीजेपी की थी जो बाद में लोकसभा की स्पीकर हुई, उसकी तमाम तमाम रिकमेंडेशन थी उसके बुनियाद पर 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ और अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को बदला गया। लेकिन बड़ी अफसोस किया, उसको बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे थे, तब चीफ मिनिस्टर थे हमारे प्रधानमंत्री जी। मुझे याद है कि पार्लियामेंट के अंदर, जिसका जिक्र भी हमारे दोस्त नहीं कर पाएंगे, अडवाणी जी की तकरीर निकाल लीजिए लोकसभा में, सुषमा स्वराज की तकरीर निकाल लीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में अरुण जेटली जी की तकरीर निकाल लीजिए, रविशंकर प्रसाद जी की तकरीर निकाल दीजिए कि कितना खराब है एक्ट और 2013 का एक्ट कितना अच्छा है। और उसके बाद उसी एक्ट को मोदी जी ने खत्म कर दिया, एक ऑर्डिनेंस निकाला, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस निकलवाया, फिर तीसरा ऑर्डिनेंस निकाला, देश भर में हंगामा हो गया और फिर उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, बीजेपी के सांसद एसएस अहलूवालिया की सदारत में कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशन दिए तो वो खिलाफ जा रहे थे मोदी जी के ऑर्डिनेंस के खिलाफ, लिहाजा वो ऑर्डिनेंस दोबारा नहीं लाया। आपने किसानों की बात नहीं सुनी और ये तीन कानून आ गए। 8 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के राज्यों के है ये सब कॉर्पोरेट के हवाले हो जाएंगे। इसलिए देश का किसान जाग गया है और बिना तरमीम के अब वो वापस नहीं जाने वाला है। ये हक कॉर्पोरेट से हिंदुस्तान की खेती को बचाने का, और इसका एक आखिरी लाइन में मैं ये कहूँ कि ये नारा है, खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, ये है आंदोलन।
शुक्रिया अतुल कुमार अंजान साहब। मैं वापस आऊंगी पवन खेड़ा साहब के पास। जैसे कि डॉक्टर मित्तल ने कहा कि ये जो तनाजा है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का नहीं है बल्कि किसान और कॉरपोरेट के दरमियान है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी कि जाहिर है कि ये कानून है और कानून तो पार्लियामेंट के जरिए ही कोई भी बिल है जो मंजूर होता है, इसमें जो अपोजिशन की पार्टियां थी उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया और बैकआउट किया और इस दौरान जो है ये कानून मंजूर कर लिया गया, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि इस पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती, उसमें फिर बाकी लोगों को भी बुलाया जाता? मतलब क्या ये मुमकिन नहीं था कि इस कानून को इस तरह जल्दी में मंजूर नहीं होने दिया जाता? पवन खेड़ा साहब,
जैसा कि आपको मैंने बताया कि बीच
कोविड के संकट के जून में ऑर्डिनेंस के रास्ते से आप ये ले आए, आखिर क्या जल्दी थी, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, किसका दबाव था? पूरे देश का ध्यान कोविड पर था और हमारी सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर, किसानों की फसल पर और अपने जो तीन चार दोस्त हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, उनके हितों का पर ध्यान था। आपने ये ऑर्डिनेंस क्यों, वो रास्ता क्यों अख्तियार किया? और उसके बाद संसद में जब ये कानून बनाया जा रहा था, आपने विपक्ष को निलंबित कर दिया, संसद से बाहर कर दिया, संसदीय जो प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कांग्रेस ने, बिल्कुल कहा हमने, क्या कहा मैं बता देता हूं आपको, हमने कहा कि हर 2-3 किलोमीटर पे फार्म मार्केट होने चाहिए। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एपीएमसी खत्म कर दो, एमएसपी का नाम नहीं लिखो। हम आज भी कहते हैं कि हर नीति में समय समय पर सुधार होते रहने चाहिए। आप कहते हैं कि एपीएमसी की फीस जो है वो, अरे आपका तो हक ही नहीं है उस चीज पर। जो आपने ये कानून पास किया है ये गैर कानूनी तरीके से किया है, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रांतों की सरकारों का हक है उस फीस पर और उस डेवलपमेंट फंड पर। आप होते कौन है ये कहने वाले कि भाई खर्च कहीं और होता है? आइए पंजाब में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ खर्च हुआ, वो दिल्ली में कहाँ खर्च हुआ। मैं दिल्ली सरकार में 15 साल का उसका हिस्सा था, हमें मालूम है वहां हमने कहाँ खर्च किया। तो इस तरह से गलत बयानी मत करिए कि कहाँ खर्च होगा। अब जब लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाएगी, एपीएमसी पर तो चार्जेस होंगे और जो निजी मंडी है उस पर चार्जेस नहीं होंगे, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी तो एपीएमसी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आप एमएसपी कहाँ देंगे मुझे बताइए? आप एमएसपी क्या किसान के खेत पर जाकर देंगे? कैसे देंगे? आपने बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में कई किसानों से मैं मिला इस चुनाव के दौरान, मालूम पड़ा वो दुखी है आपकी इस कानून से जो आप 2006 में बिहार में लाए थे। वहां सस्ते में खरीदा जाता है और बाकी देश में एमएसपी पे बेचा जा रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? बिहार के किसान को हो रहा है। आप कहते हैं कि हमारे सिब्बल साहब ने पार्लियामेंट में क्या बोला, मैं आपको याद दिला दूं, तो सुषमा जी ने जो आढ़तियों के पक्ष में भाषण दिया, आप चाहें तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के राजीव जी मित्र है मेरे, मैं उनको भेज देता हूं वो भाषण, आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं हम बिचौलिए दूर कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आप बड़े बिचौलिए बीच में ला रहे हैं और वो भी ऐसे ला रहे हैं कि उन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई सरकारी देखरेख नहीं रहेगी। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, आप पूरे देश को समझा रहे हैं, विश्व को समझा रहे हैं कि ये कानून सही है, जिनके लिए ये कानून बने हैं वो इन्हें गलत मानते हैं। सबसे पहले तो उनकी बात कीजिए। नंबर दो, अकाली दल जो आपका अपना पार्टनर था, आज से नहीं दशकों से आपका पार्टनर था, आप उसको नहीं समझा पाए। नंबर तीन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप उनसे हामी करवा दीजिए, आप मोहन जी भागवत से कहलवा दीजिए कि ये तीनों कानून सही है, फिर उनसे बहस करते हैं, हम वो भी नहीं कह पा रहे। तो आप पहले तो, सबसे पहले तो किसानों को आप आश्वस्त नहीं कर पाए, क्यों? किसान मूर्ख तो नहीं है कि वो सड़क पर ठंड में 24 घंटे दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं, आप उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं? वो मूर्ख नहीं है, आप उन्हें नहीं समझा पाए। आप पहले उन्हें समझाइए, फिर हमसे बहस कीजिए।
शुक्रिया बहुत बहुत। और अब पांडे जी, अब आपसे मैं पूछूंगी, एक तो पहले जो खासतौर पे मेरा सवाल है वो अकाली दल से मुतालिक है कि अकाली दल अलग हो गई बीजेपी से इसी इशू पर, और एक दूसरी बात ये कि जाहिर है जो दो इलेक्शन जिनमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की उसमें आम तौर पर किसानों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी के हक में वोट दिए, तो जब इतना बड़ा एक तब्दीली लाई जा रही थी एक निज़ाम में, तो चाहे वो बेहतरी के लिए थी जैसा कि हुकूमत समझती है, लेकिन क्या इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं था कि पहले इन तमाम तंजीमों से, भारत में बड़ी मुनज़्ज़म है मजदूर किसान तंजीमें, उनसे कंसल्ट किया जाता, उनसे बात की जाती, उसके बाद ये कोई कानून लाया जाता? राजीव पानी साहब,
ऐसा है कि अकाली दल से हमारा बहुत ही पुराना अलायंस था और वो इस विषय पर चले गए, वो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि ये जो बिफोर जीएसटी 14.5% का जो झोल था और जो अभी भी 8.5% का झोल है, इसको ग्रैब करने के लिए लोग हैं और वही लोग किसानों को समझा करके बुझा करके लाए हैं, जो केवल आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जितने लोग हैं आज प्रोटेस्ट में किसान, वो पंजाब से आए हैं। पहली बार जहां कांग्रेस की सरकार है वो इसको राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ रही है। तो देश के किसान की जब बात करते हैं तो यूपी में भी केवल एक एरिया का किसान आ रहा है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस देश में अभी एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है, मैं
बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी का विरोध किसी भी चीज में करना है तो वो वर्ग आकर के वहां बैठ जाएगा। ठीक है, जितनी भी जो ये पॉलिसी बनी एपीएमसी या मोनोपोलाइजिंग ऑफ मंडी, ये उस जमाने की बात है जब भारत में लोग भुखमरी से मरते थे। ये सारी बातें जितने भी कानून है ये 60s के हैं। आज के डेट में अगर हमको जो फसल जो रखना है पूरे साल भर चलाने के लिए और जिससे कि कभी कोई शॉर्टेज नहीं हो, तो वो करीब 42 ट्रिलियन टन है और हमारे पास आज रखने को जगह नहीं है। 92 ट्रिलियन हमारे पास है और एफसीआई ने खरीद करके रखा हुआ है। आप जो काम अभी मोनोपोलाइजिंग ऑफ मंडी से हो रहा है, एक बात बताइए, कौन सा लिबरलाइजेशन पॉलिसी को आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं लेफ्ट की बात समझता हूँ। देखिए, वो जो उनकी राजनीति है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, इसीलिए वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लेफ्ट की बात मैं समझता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे कह सकती है कि किसान डिस्ट्रिक्ट के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में 2 किलोमीटर पर अगर एपीएमसी मार्केट है तो वहां नहीं जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपने मंडी में बेचे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसान नहीं ले जा सकता है, लेकिन दलाल ले जा सकता है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी पे बड़ी, मतलब जो कल तक कह रहे थे कि हम इन सबको ठीक करेंगे, वो उसको अभी विरोध कर रहे हैं। जहां तक अंजान साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, आपके रेडियो शो पे कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलत बयानी की है तो मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या गलत बयानी की कि इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, उनको लीगल नॉलेज नहीं है। एसडीएम के बाद उसकी अपील कोर्ट होती है और भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कहना कि ये इसमें हाईकोर्ट नहीं जा सकते सुप्रीम, ये बहुत बड़ा झूठ है। एसडीएम, एसडीएम की अपील, अपील के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। चौथी बात जो मेरा कहना है, जो आदमी एसडीएम के पास नहीं जा सकता वो कोर्ट में लॉयर की फीस कैसे देगा? मेरे हिसाब से इस कानून में एसडीएम इसलिए रखा गया कि एसडीएम एक सरकारी पदाधिकारी है, उसका काम है उस झगड़े का निपटारा करना। और इसमें जो मैक्सिमम पावर है एसडीएम का, वो आप अगर उसको देखेंगे तो किसान के खिलाफ वो कोई एक्शन ही नहीं ले सकता। वो जमीन के साथ उसका कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस पर डिसीजन दे सकता है कि प्रोड्यूस किसका होगा। देखिए, ये झूठ फैला करके देश में एक वर्ग है जिसका काम है कि हर बात में विरोध करना, और दूसरा लेफ्ट जिनका काम है, मैं कह रहा हूं अगर अगर ये कानून से प्रॉब्लम हुई तो देश में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, कौन जिम्मेवार है? आपका आपका संगठन था, कानून तो अभी आया ना। ये क्या चाहते हैं कि इनकी मोनोपोलाइजिंग चली, इनकी ट्रेड यूनियन की राजनीति चलती रहे, भले ही किसान को फायदा हो या ना हो। अब ये किसान को तय करना है कि किसान, अभी चुनाव हुए बिहार में तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया, हम जो भी काम करते हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं और जनता से लेते हैं। अभी बंगाल में होगा, बंगाल में क्यों नहीं किसान प्रोटेस्ट कर रहे? देखिए क्या है, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, मैं उसके बाद अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। पूरे बिहार में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया किसानों ने, वहां जो लालू प्रसाद यादव जो उनका बेटा आज प्रदर्शन के लिए आया, किसान नहीं आए। महाराष्ट्र में आइए, कोई किसान नहीं आया। अब सारी पार्टियां गोलबंद हो रही है कि किस प्रकार से इसको हम यहां भी फ्यूल करें। देश में हरियाणा में कुछ किसान, पंजाब के मैक्सिमम लोग जो आए हैं, और वेस्टर्न यूपी का एक हिस्सा है जिनका काम है दिल्ली में सारे डिस्टर्बेंस में उनका पार्टिसिपेशन है, जो दंगाइयों में भी उनका पार्टिसिपेशन, ये लोगों को छोड़ करके आप मुझे बताइए ना कि देश के किस हिस्से में, क्या तमिलनाडु में किसान नहीं है, केरला में किसान नहीं है, आंध्र प्रदेश में किसान नहीं है, तेलंगाना में किसान नहीं है, कि मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सबसे बड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा किसान है, इनकी सरकार है, कहां कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? अब प्रोटेस्ट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश।
मैं इसका जवाब पांडे जी लेती हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगी कि हमारे जो मजदूर किसानों के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि जो बातचीत चल रही है, हुकूमत जो राउंड्स कई हो चुके हैं उसमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें 9 बातें ऐसी हैं जिनको तब्दील किया जाना चाहिए।
देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात है, हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी ने कई बार पार्लियामेंट में भी कहा, बाहर भी कहा कि हम एमएसपी को छोड़ने वाले नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी है। ये कह रहे हैं आप लिख के दो, आपकी बात पे हमें भरोसा नहीं। अब ऐसी जो कुछ बिंदु है जो हम कही नहीं रहे, हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी को हटाना है, हमने कभी नहीं कहा एपीएमसी मार्केट को हटाना है, हम तो कह रहे हैं एपीएमसी मिल जाएगा लेकिन उसकी मोनोपोलाइजिंग, जो आदमी अगर किसान के पास जाकर के ज्यादा पैसा दे सकता है तो उसको ज्यादा पैसा, नहीं तो एपीएमसी रहेगा, एमएसपी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंटिन्यू करेगा। और ये अगर वो कह रहे नहीं आप लिख के दो, तो इन सब मुद्दों पर अगर किसान में, देखिए किसान तो इस देश का कोई भी राजनीतिक दल किसान के विरोध में नहीं जा सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी हो, पवन खेरा साहब की पार्टी हो, अतुल अंजान साहब की पार्टी हो, किसान के विरोध में जाने की मतलब कोई पार्टी सोच भी नहीं सकती है, किसानों का देश है ये। अभी क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है अभी उन्होंने कहा कि 91 के बाद ये हो गया वो गया, हमें लग रहा है कि 91 की जो पॉलिसी थी जिसका हमने भी समर्थन किया, बाद में अटल जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, अभी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उससे देश में गरीबी में कमी आई है, जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें पता है कि क्या हालत थी देश की, क्योंकि मैं 95 से दिल्ली में रह रहा हूं। तो उनकी पॉलिसी ही अलग है, हमारी हमारी सोच और समझ हमारी अलग है। हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। जितना खर्चा किसान के लिए काम किया गया और मजदूर के लिए काम किया गया, उसी का रिपरकशन है कि जब मई 2019 में चुनाव हुआ तो किसानों ने मजदूरों ने नरेंद्र भाई मोदी को पहले से भी ज्यादा बहुमत दिया। इसके बाद बहुत सारे चुनाव हुए, आप देख लीजिए। रंजन साहब को लग रहा है कि उनकी पॉलिसी का बहुत जबरदस्त समर्थन है देश में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी चुनाव बंगाल में होंगे वहां जाइए, और नहीं तो 24 में तो पूरे देश का भी चुनाव होगा, वहां भी अपना टेस्ट करिए। जनता तक हम भी जाएंगे, आप भी जाइए, फाइनली जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, वो जो कहेगी वो करना पड़ेगा, वो आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, पवन खेड़ा साहब को भी करना पड़ेगा। इस तीनों कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसान की कोई दिक्कत हो सके।
एक टिप्पणी करना चाहूंगा, पवन खेड़ा बोल रहा हूँ, मैं पांडे जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, राजीव जी से, भारतीय किसान संघ क्यों इन कानूनों के खिलाफ है? ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है, आप उन्हें क्यों नहीं समझा पाए? इतना जवाब दे दीजिए कि भारतीय किसान संघ भी आज किसानों के साथ, आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा है, क्या वो भी मोदी जी के खिलाफ है? क्या वो भी मोदी जी को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है मोदी जी के खिलाफ?
मेरा ख्याल है कि ये सवाल हम अपने जो किसानों के नुमाइंदे हैं उनके रहनुमा उनसे करते हैं। मैं डॉक्टर मित्तल आपसे पहले तो ये पूछूंगी कि जो पांडे जी ने बात की कि इसमें ज्यादातर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पंजाब के किसान हैं और बंगाल और बिहार और दूसरे कई इलाकों से कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो पहले तो ये कि इसमें कहाँ तक सदाकत है और अगर ऐसा है तो क्यों है, और उसके अलावा जो भी आप बाकी बातों का जवाब देना चाहें।
पंजाब के 2.5 लाख किसान दिल्ली हैं और जत्थे आते चले जा रहे हैं, हरियाणा के बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं और यूपी के भी आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो सरकारी खरीद का फॉर्मूला था उसमें इन्हीं इलाकों में ज्यादातर खरीद होती थी, तो सीधी खरीद, सरकारी खरीद और एमएसपी से ये इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत का सवाल किसान केवल चुनावों से तय नहीं होता, जमहूरियत का सवाल आज दिल्ली की घेराबंदी से तय हो रहा है, और बीजेपी के नेता किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री किसान के मन की बात नहीं सुन रहे, आज ये बात सबके सामने है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया, अगर प्रधानमंत्री से ये बात कहेंगे वो, उन्होंने कहा कि हमारे पास गेहूं और चावल का आवश्यकता से 2.5 गुना ज्यादा ऑलरेडी भंडारण है, जाहिर बात है सरकार कितना खरीदेगी। ये बात जब वो कहते हैं हम एमएसपी और सरकारी खरीद बंद नहीं करने जा रहे हैं, तो ये बात प्रधानमंत्री से कहें कि हमारा असली तर्क है कि हम नहीं खरीदना चाह रहे हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खाना बहुत है लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, दुनिया के अंदर भूखे लोगों की जो सूची है, उसके 107 देशों में भारत हर साल नीचे गिरता जा रहा है। पिछले साल 88 पे था, इस साल 94 पे पहुंच गया है, श्रीलंका 66 पे है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत से ज्यादा अच्छे हैं, जबकि भारत कहता है हमारे पास खाना बहुत ज्यादा है, क्योंकि खाना जो है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भंडारण उसका नहीं होता है, खाना जो है खरीदा जाता है फिर वो कंपनियों को और दूसरे कामों के लिए बेच दिया जाता है या सड़ा दिया जाता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 3.4% खेती का विकास दिखा रहे हैं और 7.5% बाकी कॉरपोरेट दुनिया के से नियंत्रित जो सीधा नियंत्रण है उसमें जो गिरावट आई है, अब सरकार चाहती है कि कॉरपोरेट खेती में घुस जाए ताकि खेती से कमाई करे। इन्होंने बताया कि ठेका खेती तो एक विकल्प है, किसान पढ़ा लिखा है उसको ना चुने, तो इसका मतलब है कि पुरानी व्यवस्था, तो आप खुद ही कह रहे थे किसानों को राहत नहीं दे रही, संकट में है, और नई व्यवस्था आप कह रहे हैं कि अगर सब किसान चाहे तो ना चुने, तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं आप किसान के लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं दे रहे हैं। देश के अंदर एमएसपी के जो ये कह रहे हैं जारी रखेंगे, 700 रुपए क्विंटल पे मक्का बिक गई है जबकि 1760 रुपए क्विंटल थी। हम बताना चाहते हैं कि ये तीन कानून किसानों को खेतों से उजाड़ देंगे, इसीलिए किसान यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने जीवन और जीविका की रक्षा के लिए हैं। जितनी जल्दी वो किसानों के मन की बात सुन लें और इस बात को पहचान लें कि जवाब देना होगा, उतना अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते हैं।
अंजान साहब से पूछूंगी, एक तो ये बात कि जो पांडे जी ने बात कही थी कि ये कानून जो है वो 60s के हैं और अब इन्हें तब्दील करने की जरूरत है, ये अब फरसुदा हो चुके हैं, इसके बारे में। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ और जो बंद कर दी गई सरहदें, किसान बाहर बैठे हैं, और जब हिंदुस्तान बंद होने की बात की जा रही है और एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, तो उसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त भी ये जो है बहुत सी अशिया जो है, दूध, फल, सब्जी और कई अशिया दिल्ली में आना बंद हो गई हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इससे क्या एक आम सतह पर इस आंदोलन के खिलाफ जो है जज्बात पैदा नहीं होंगे?
मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्त पांडे जी के सवालों का जवाब दूंगा।
जी जरूर।
जो उन्होंने हमारे वकालत तो वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लेकिन मैंने भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से LLB फर्स्ट क्लास पास किया और LLM फर्स्ट क्लास पास किया, और मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आवाम की वकालत कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ अगर कोई भी मामला सरकार करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके लिए फ्री में मुकदमा उनकी तरफ से लड़ेगी। तो हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम तंजीमें हैं, तरक्की पसंद मुसन्नफीन हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर तरक्की पसंद जो तमाम बड़े बड़े नाटककार हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म की हस्तियां हैं, बड़े बड़े और भी तंजीमें हैं, वो सब तो आज खुल करके किसानों के साथ खड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि समर्थन नहीं है इस किसानों ने और मजदूरों ने 26 नवंबर को 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन भारत हड़ताल किया था। सरकार की अर्थव्यवस्था के मंत्रालय ने कहा कि इस हड़ताल से 4,00,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन रुक गए, क्योंकि देश के सारे बैंक, LIC, GIC, पब्लिक सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब बंद था, और किसान भी उसके साथ थे। उन्होंने ग्रामीण भारत बंद का किया था, तो किसान और मजदूर एक साथ खड़े हुए हैं इस सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ। और आप ये समझ लीजिए कि खाली क्यों मजदूर खड़े हैं, मजदूरों की सारे डेमोक्रेटिक राइट्स, ट्रेड यूनियन राइट्स सब छीन लिए गए, खत्म कर दिए गए, पेंशन खत्म कर दी गई, कोविड के नाम पर डियरनेस अलाउंस मजदूरों के, सरकारी कर्मचारियों के सब रोक दिए गए। और क्या हो रहा है इस देश के अंदर, 10 तारीख को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट 40,000 करोड़ से बनवा रहे हैं, MP नए बंगले बन रहे हैं 10,000 करोड़ में। अरे इस मुल्क में जरूरी है क्या, पार्लियामेंट इतनी शानदार है, कहीं टूट फूट हो गई इसको ठीक कर लो, नया पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। बंगाल में आप हर बार किस बात पर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में एक भी मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में क्या कहा कि हमारे ये 3 कानून जो हमने एग्रीकल्चर में पास किए हैं इस पर किसी ने चर्चा की, मुझे बता दीजिए कहीं किसी भाषण में कहा हो, लोग समझ रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी अपने वार्ड के नगर पालिकाओं के चुनाव में हार गए, जिला पंचायत हार गए, और अभी वहां उन्होंने मेयर को MLC का चुनाव लड़ाया अभी परसों, वह भी हार गए। तो शुरुआत हो रही है। अभी हैदराबाद में जो आपके नेतागण गए थे भारतीय जनता पार्टी के, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, घर मंत्री, उनकी तकरीरें सुन लीजिए। और ये कहा जा रहा अभी भी देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास किस्म के लोग आ रहे हैं। कितना आप कहेंगे कि खास किस्म के लोग आ रहे हैं, ये पद्म विभूषण, ये सरकारी सब वापस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज में कितने लोग हैं जिनके बेटे और जिनके बेटे फौज में और जिनके माँ बाप और भाई बहन आज यहाँ दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, लाखों लोग हैं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वहां शादियों का माहौल है इससे थोड़ा कम है। और मैं पूछ रहा हूँ ना, ठीक कहा कि APMC खत्म हो गई बिहार में, लेकिन बिहार में 800-900 रुपए मांडी नहीं है तो खरीदा जा रहा। आप कह रहे कि सही देश में बेचेंगे, दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम घट गए भाई साहब, जब मनमोहन सिंह जी थे तब $140 पर बैरल था कच्चा तेल, और याद है प्रधानमंत्री हमारे क्या कहते थे कि खुशकिस्मत लोग आते हैं तभी तो $40 पर बैरल कच्चे तेल का दाम हो गया। मनमोहन सिंह जी के जमाने में $140 पर बैरल और हिंदुस्तान में पेट्रोल बिकता था 70 रुपए, 71 रुपए पर लीटर, आज 42, 45, $50, $60 पर बैरल है कच्चे तेल का दाम दुनिया के बाजार में, तब भी हिंदुस्तान में 82 और 83 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल 70 रुपए बिक रहा है। पॉलिसी का सवाल, इसी GST का विरोध करते थे, पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेट पॉलिसी
ہے. اور میں آخر میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیم قانون بہت اچھے ہیں تو لاگو کرنے میں یہ کیوں سویکار کر رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہیں ایس ڈی ایم کی کورٹ میں. ارے ایس ڈی ایم کی کورٹ میں آپ ہم کو تھیوری سمجھا رہے ہیں, اوپر ہم سیدھے جانا چاہتے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے کی اجازت یہ قانون نہیں دیتے. آپ کہہ رہے ہیں ایس ڈی ایم سے جائیے پھر نیچے اوپر, یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟
میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے جانا چاہوں گی آپ چاروں کے پاس, لیکن بہت مختصر. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کھیڑا صاحب کہ کانگریس کے ایجنڈے کے لحاظ سے بتائیے کہ اس وقت مسئلے کو سلجھانے کے لیے, اعتراض کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا ہے جس سے کسانوں کے مسائل کو ختم کیا جا سکے اور ان کے پروٹیسٹ کو ختم کیا جا سکے؟
شنا جی, جن لوگوں کے لیے, جس ورگ کے لیے قانون بنے ہیں, اگر اس ورگ کو یہ قانون سویکار نہیں ہے تو کیا کانگریس اور کیا بی جے پی اور کیا اتل کمار انجان؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. کسان اگر اس کو نو کہتے ہیں, نو مینس نو. اور پانڈے جی آپ یہاں بیٹھ کر پھر سے ایک غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ اب تک پرانے قانون کے تحت کسان اے پی ایم سی کے علاوہ کہیں بیچ ہی نہیں سکتا تھا. معاف کیجیے گا, یہ غلط بیانی ہے. اے پی ایم سی کے پرانے قانون میں کہیں ایسا کوئی پراودھان نہیں ہے کہ کسان کہیں اور بیچنے کے لیے سوتنتر نہیں ہے. تو یہ غلط بیانی کم سے کم یہاں بیٹھ کر مت کیجیے.
جی شکریہ. اور اسی اختصار کے ساتھ اگر پانڈے جی, راجیو پانڈے جی, اب آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ بیچ میں بات بھی کرنا چاہ رہے تھے.
میں دو باتیں کر کے ختم کروں گا. تو انجان صاحب نے بڑی تقریر کی لیکن اس میں کسان کا کوئی وشے نہیں تھا. انہوں نے اوور آل پالیٹکس انڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں, مذہب کے آدھار پہ ہم چناؤ جیتتے ہیں, یعنی یہ جنتا کو گالی دے رہے ہیں. اس لیے جنتا نے ان کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا. اب یہ کہیں بچے نہیں ہے, یہ ہندوستان میں ایگزٹ نہیں کرتے ہیں. اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو وائس پریسیڈنٹ ہے, جنوری میں چناؤ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں, بھیانک روپ سے ہاریں گے. آپ کو میں فون کر کے بدھائی دوں گا اس کے لیے. اب تیسری بات جو ہے نا, کسان یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسان کیا ہت میں ہے لیکن یہ بتا نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کانٹریکٹ فارمنگ ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے, وہ پڑھے لکھے. میں نے کیا کہا کہ اگر ان کو لگے گا کہ کانٹریکٹ فارمنگ سے میرا نقصان ہے تو کانٹریکٹ فارمنگ پر نہیں دیں گے. دوسری بات, اگر منڈی سے زیادہ پہلے بھی بیچ رہے تھے اور منڈی کے سوائے پہلے بھی بیچ رہے تھے تو اس قانون میں نیا کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی تک ہے کہ اے پی ایم سی میں ایم ایس پی, وہ جتنی چیزیں آج ایگزسٹنگ ہے وہ ساری چیزیں رہیں گی. ساتھ میں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی کسان کو لگے کہ کسی بھی کارپوریٹ سے یا کہیں سے بھی ہم کو کسی تھرڈ پارٹی سے اگر زیادہ پرائس مل رہا ہے تو وہاں بیچے, اور نہیں تو جا کر کے منڈی میں بیچے. منڈی جب بھارت کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں, سب جگہ سے کہہ رہے ہیں, پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگا, اے پی ایم سی ختم نہیں ہوگا. اب بات چلے کہ لکھ کے دو, اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی چل رہا ہے ڈسکشن وہ بھی ہو جائے. اور بار بار دو بار پون کھیڑا صاحب نے کہا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا جو کسان سنگھن ہے وہ بھی اس کا ورودھ کر رہا ہے. بہت سارے کنفیوژن ہوں گے, ہم لوگ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ بھی کسی بات میں ورودھ کرتے ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے, اور کسان کا ورودھ کسان کے اگینسٹ میں جا کر کے بھارت میں کوئی بھی ویکتی راجنیتی نہیں کر سکتا ہے. کسان سے بات چل رہی ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کسانوں کے ساتھ سہمتی بنے, اور اس جو بھی کسان جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رائٹنگ نہیں چاہیے, جو پاسبل ہے وہ کر کے اس وشے کا سمادھان بہت جلد نکلے گا, ایسی میری اپیکشا ہے.
لیکن آپ کو اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ ان قوانین کو ختم کر دیا جائے جیسا کہ کسانوں کا مطالبہ ہے؟
مجھے ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ان کے کنفیوژنس ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو لکھ کے چاہیے, ایسے وشے پر جو کہہ رہے ہیں, 8-9 پوائنٹس پر بات چل رہی ہے, اس پر بات ہوگی. کیونکہ قانون کو مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے سرکار کے لیے. میں تو ایک معمولی پروکتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کسان سے بات کر کے جو بھی ہے اس پر ایک کنکلوژن پہ پہنچ کر کے اس وشے کا حل نکالے گی. سارے بڑے منتری اور ابھی پردھان منتری جی سے بھی کل بات ہو رہی ہے,
بہت شکریہ. اور اب پہلے ڈاکٹر متل, آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8 کو جو ہندوستان بند جو دن منایا جائے گا منگل کے دن, تو اس میں کتنا بڑا ہوگا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں کیا آپ کو امید نظر آتی ہے کہ جو 9 تاریخ کو پھر میٹنگ ہوگی دوبارہ 34 تنظیموں کے درمیان, اس کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟
پہلی بات تو 8 تاریخ کا بند ہندوستان کے سارے پرانتوں میں اور سارے پرمکھ شہروں میں اور تمام گاؤں کے اندر ہوگا. उसकी भागीदारी का रूप और अलग अलग होगा अलग अलग स्तर पर होगा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि पिछले सारे कार्यक्रम 25 सितंबर 5 अक्टूबर 5 नवंबर सब पूरे हिंदुस्तान भर में हुए। दूसरा ये सवाल 70 करोड़ किसानों का सवाल है, इनको खाना खाना होगा, इनको जीवन चलाना है, और सरकार के दोनों कानून साफ तौर पर कॉरपोरेट को लीगल राइट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि एपीएमसी में क्या था नहीं था, अब कॉरपोरेट को लीगल राइट मिल रहा है कि वो अपनी निजी मंडियां स्थापित करके खेती के हर क्षेत्र में, प्रसंस्करण में, फूड सिक्योरिटी पे, हर चीज पे हस्तक्षेप करे। सरकार चाहे जो भी सरकारी सिस्टम था हमारा जो बुरा था, उसकी बुराई के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को 91 से ही बढ़ाते चले गए, जिसमें कॉरपोरेट और विदेशी कंपनी का सेक्टर है। ये आत्मनिर्भर विकास और विदेशी कॉरपोरेट के विकास का सवाल फंस गया है। इसलिए सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो एक छोटी सेवा थी, ये पूरे जीवन के चलने का सवाल है, जमीन छीनने का सवाल है। इसीलिए किसानों ने साफ तौर पर कल की वार्ता में यस और नो में सरकार से जवाब मांगा है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, शांतिपूर्वक रूप से लोग बैठे हुए हैं और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बुआई का सीजन खत्म हो गया, पूरा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली को घेरने के लिए तैयार है। जो सब्जियों की और दिक्कत आप बता रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर सरकार मानेगी तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान का किसान जिएगा। जो एमएसपी और बाकी सवाल हैं जो अभी लंबित हैं, जिन पे अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों की मांग है कि रही है पुरानी की एमएसपी सारी फसलों का दिया जाए, वो एक गारंटी है सरकार के लिए। ई ट्रेडिंग और विदेशी कंपनियां और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो दुनिया के अनाज के ट्रेडिंग करते हैं 70% 80%, जो बहुत सस्ते में बेच सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ की खेती, यहाँ के गेहूं और धान के खरीद के रेट को बहुत ज्यादा गिरा सकते हैं, उससे किसान अगर मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर एक नया विकास होगा, जिसमें किसान की जेब में पैसा होगा, खरीदार के रूप में बाजार खड़ा होगा।
शुक्रिया अतुल कुमार रंजन साहब। अब आप मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि ये जो 9 तारीख को अब बातचीत होगी हुकूमत और 34 जो किसान तंजीम है उनके दरमियान, उसमें क्या चीज मुख्तलिफ होगी उससे जो अब तक बात हुई है?
देखिए, एक तो मैं कहूँ कि 8 तारीख को, जो 8 दिसंबर को भारत बंद है, ये एक नायाब किस्म का भारत बंद होगा। तो एहतजाज तो है बड़ा लंबा चौड़ा, और जहां तक सच और इंसाफ की बात है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, तो ये अंधेरे में तेज नहीं, ये सारा जो काम कर रही है सरकार हमारी, ये कारपोरेट घरानों के रास्ते पे कर रही है। आज तक सीट बिल नहीं पास होने दिया इस सरकार ने, 60,000 करोड़ रुपए की विदेशी कंपनियों का बीज भारत में होता है, जो स्वदेशी का नारा लगता है। हमारा चीन से बड़ा झगड़ा है, और हमारी सरहदों पर और चीन के ऊपर कभी बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं है सरहदों के सवाल पर। लेकिन आपको मालूम है, हमारे मुल्क में पिछले फरवरी के महीने से भारत की सरकार चीन को चावल बेच रही है, और जानते क्या रुपए, हमारे मुल्क में मोटा चावल 40 रुपए किलो बिक रहा है और चीन को एक्सपोर्ट हो रहा है 22 रुपए किलो चावल। तो हमारे देश में ये है, प्रधानमंत्री जी बोलते थे हमारे 2014 में और उसके बाद, हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे। हम तो उसके मेंबर, हम तो उसके ड्राफ्टिंग आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर कहा है, इनके जो मरहूम नेता थी सुषमा स्वराज लीडर अपोजिशन ने क्या कहा है, सबसे शानदार रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन क्या हुआ, इसी पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि 201 सिफारिशों में से 200 सिफारिश मंत्री साहब बोल रहे थे कि स्वामीनाथन कमीशन के लागू हो गई, तो फिर किसान क्यों सड़क पर आ गए? भारत के किसानों के सवाल पर अब आज मैं कहना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशन ने भी, उसके सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि किसानों के सवालों को हल करना चाहिए पीसफुल तरीके से। उन्होंने किसानों को भी नसीहत दी है और सरकारों से भी कहा है, तो आप इसको मत बोलिए। और भारतीय किसान संघ के बारे में कहना चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके दो दो राज्यों के किसान संघ के अध्यक्ष आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि रास्ता आसान नहीं होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से आखिर में आपकी इस बहस के जरिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि किसानों की बात को सुनिए।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप चारों मेहमानों का, जिस तहमुल से आपने एक दूसरे की बातें सुनी और एक दूसरे की बातों का जवाब दिया। तो पवन खेड़ा साहब, राजीव पांडे साहब, अतुल कुमार अंजान साहब और डॉक्टर आशीष मतिल, आप चारों का बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।
शुक्रिया।
की राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
और सभी इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत भी दीजिए आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की। हमारा ये प्रोग्राम 27 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔